ओम शांति। बाबा की मुरलियों में सबसे ज्यादा जोर किस बात पे? देही अभिमानी बनने पर, आत्माभिमानी बनने पर। और इसकी बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बताते रहते हैं, अलग अलग विधि। तो सभी को इस अभ्यास पर बहुत ध्यान देना चाहिए। आत्माभिमानी बनने से क्या क्या फायदे होंगे, पहले इसकी थोड़ी पॉइंट्स निकाल लें। आप सभी चिंतन करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज के जब लाभ मनुष्य को पता होता है तो उसका अभ्यास सच्चे दिल से किया जाता है। भोजन में ही हमें पता हो ये चीज खाने से बहुत शरीर को फायदे होंगे, टेस्ट नहीं फायदे होंगे, तो कितना रुचि से खाएंगे, इकट्ठे भी करेंगे जहां तहां से। आत्माभिमानी स्थिति के फायदे क्या हैं? और ये स्थिति सहज भी बहुत है, कुछ ज्यादा मेहनत की बात नहीं इसमें। मेहनत तो उन्हें होती थी जो जिन्हें ज्ञान नहीं था, तो ये बात सबसे बड़ी मानी जाती थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, भारी। ज्ञान मिल गया, सहज अभ्यास होने लगा। अब बोलेंगे, सभी चिंतन करेंगे, जितने बैठे सबको सुनाना है। आत्माभिमानी होने से योग सहज हो जाएगा। अब बहने बताएंगी, चुप नहीं बैठना है, छलकाओ अपना ज्ञान कलश। चलो भाई बोलो, ठहर। अतिंद्रिय सुख बहुत मिलेगा, ये बाबा के महावाक्य हैं। अब सोचा बहनों ने, हल्के बहुत हो जाएंगे। तीन बातें आ गई भाई लोग, हाँ? बुद्धि की एकाग्रता बढ़ जाएगी, सबसे बड़ी प्राप्ति होगी, क्योंकि एकाग्रता के बाद बहुत चीजें सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। एकाग्रता हर फील्ड में जरूरी होती है, तो बुद्धि का भटकाव बंद हो जाएगा, एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी। हाँ माताएं, एक एक बोले हाथ उठा के, थोड़ा जोर से। सारे कार्य आसान हो जाएंगे। दूसरे क्या बोल रहे थे, जोर से बोलो, अभी ठंडी इतनी तो नहीं है कि आवाज ही ना निकले। नहीं समझ में आए भाई बोलो, निश्चिंत और बेफिकर बादशाह बन जाएंगे। और बोलो, अब देह में मैं आत्मा हूं, बोलो। हाँ वो तो आ गई, बोलो बहने हाथ उठा के बोलेंगी, सुख शांति का अनुभव होगा। न्यारे और प्यारे बनते जाएंगे। चलो भाई पीछे वाले, समान दृष्टि हो जाएगी, संभाव हो जाएगा। और बोलो, उपराम स्थिति होती जाएगी, संस्कार के टकराव भी नहीं होंगे, बाबा के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। माताओं का अच्छा लग गया है, छलकाओ जरा, शुरू करो, लेकिन थोड़ा जोर से बोलना है, हैं? साक्षी दृष्टा भाव, वो आत्मिक दृष्टि से होगा। आत्मिक, आत्माभिमानी में आत्मिक दृष्टि भी एक उसका हिस्सा है। और बोलो, योग में मेहनत नहीं होगी। नहीं सुनने में आता आपका, कर्मातीत हो नहीं जाएंगे, कर्मातीत अवस्था की ओर तेजी से कदम बढ़ेंगे। अब और बोलो, अभी यहां आ जाओ, अपने ठीक सुनाया, आत्मा और देह अलग है, तो देह का आकर्षण समाप्त होता जाएगा और इस कारण से क्या होगा, सारे विकार समाप्त होते जाएंगे, कर्मेंद्रिय जीत बनते जाएंगे, कर्मेंद्रियां शीतल होती जाएंगी और प्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी, सरल हो जाएगी, वैराग वृत्ति भी आती जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जब हम आत्मविमानी का अच्छा अभ्यास करते हैं तो संसार से बुद्धि हटती जाती है। क्यों हटती जाती है? क्योंकि आत्मिक सुख बहुत ज्यादा मिलने लगता है, वो परम सुख है। उस सुख के बाद खाने पीने में बुद्धि जाए, पहनने में जाए, ये चाहिए वो चाहिए, सब खत्म होने लगता है, तो वैराग वृत्ति हो जाती है, न्यारा प्यारा। और बोलो, बंधन मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा बंधन देह का है। देह से के बंधन से मुक्त होने से बाकी बंधन भी मुक्त होते जाएंगे। जो भी बांधेले बांधेलियां हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, अगर वो देह के बंधन से मुक्त होते रहेंगे, न्यारे होते रहेंगे, तो बाकी बंधन भी समाप्त हो जाएंगे, कार्य शक्ति बढ़ जाएगी, आत्मा की चमक बढ़ेगी, सुगंध बढ़ेगी, रूहानियत बढ़ेगी, जिसकी बहुत चर्चाएं मुरलियों में आ गई हैं। चलो, और याद आएगा फिर सोचना, चाल चलन से भाई नहीं पूरा सुनने आता बहनों का, ज्यादा योग किया आज हमको शायद। अच्छा चले, अब एक बात मुझे स्पष्ट कर देनी है, बहुत बार बाबा की ये बात सुनाई जाती है, जितना देह से न्यारा रहेंगे उतना ही बाप के और सबके प्यारे हो जाएंगे। तो बहुतों ने प्रश्न किया, हम तो देह से न्यारे होते ही नहीं, बोलो क्या गलती हुई इसमें? उन्होंने ऐसा मान लिया, देह से न्यारा होना माना शरीर गया, बिल्कुल अलग हो गए हम, डेड हो गया शरीर, न काम कर सकते, न बोल सकते, न उठ सकते, डेड जैसे हो गए, ये नहीं। आत्मिक स्मृति को बढ़ाना ही देह से न्यारा होना है। अब देह से न्यारे होने के साथ एक शब्द और जोड़ दें इसमें तो सहज हो जाएगा, देह भान से न्यारे, ठीक है? सभी को ये बात समझ लेनी है, जितने जितने हम आत्मविमानी होने की प्रैक्टिस करते हैं देवान छूटते जाता है, इसको कहते हैं देह से न्यारापन, देह में रहते भी देह से न्यारापन। और अभ्यास करते करते बाबा की जो आखिरी में स्थिति आ गई थी वो आ जाएगी। बाबा मुख से बोला करते थे, मैं देह में ऐसे रहता हूँ जैसे इसमें हूं ही नहीं, ऊपर ही ऊपर। ऊपर रहना माना देह नीचे है, देह की कॉन्शियसनेस, देह का भान ढीला पड़ता जाएगा। एक ये बात सभी को स्पष्ट होनी चाहिए। बाबा का ये बहुत अच्छा महावाक्य है, बता चुके हैं, मैं उस पूरे महावाक्य को सुना देता हूं। अतिंद्रिय सुख पूछना हो तो उन बच्चों से पूछो जो आत्मभिमानी होकर रहते हैं, इसमें परम सुख है, बहुत सुख है इसमें, संकल्प शांत होते जाएंगे। जिनको भी ये बहुत बड़ी समस्या है, कईयों को बहुत बड़ी समस्या है कि व्यर्थ रुकता नहीं है। आज कितने ही फोन आए ऐसे, मैं अपना फोन तो सारा टाइम नहीं खोलता, औरों के पास आते हैं वो बात कराते हैं, व्यर्थ बहुत चलता है। अव्यर्थ चलाया भी जाता है और चलता भी है, चलाया भी जाता है, उसके कुछ कारण बना लिए जाते हैं। मैं एक अनुभव सुना देता हूँ। किसी का फोन था, अच्छा कंपटीशन देना चाहती है वो लड़की, पर उसका किसी फ्रेंड से बहुत प्यार था। मैंने कहा शादी करना चाहती थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे ही हमारी फ्रेंडशिप थी। अब वो जो उसका फ्रेंड था उसको अर्थराइटिस हो गया, जोड़ों का दर्द होता है ना, भाई का दर्द, वो हो गया। अब वो परेशान रहता है, माँ बाप भी उसकी ज़्यादा केयर नहीं करते। अब वो इसे फ़ोन करता है, वो इसका सहारा चाहता है कि ये अच्छी बात सुनाए कुछ, लेकिन हर बार फोन करने में दोनों की लड़ाई होती है। बुद्धि भटक रही है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब ये भी बात हो रही थी, रूपेश भाई लाया कि भाई एक बहन का फोन आ रहा है, इससे बात कर लूं। मैंने कहा देखो एक चीज तो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी बुद्धि उस फ्रेंड से बात करके डिस्टर्ब हो रही है, तुम्हारी पढ़ाई हो नहीं रही है, तुम वो कंपटीशन क्लियर नहीं कर पाओगी, कंपटीशन आईएएस का। मैंने कहा पता है आईएएस में कितने बच्चे बैठेंगे? कई लाख, और हार्डली 500 का सिलेक्शन होगा, उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट में उनको भेजते हैं। क्या तुम समझते हो तुम कर पाओगे? कहा मुझे भी नहीं लगता मैं कर पाऊंगी। मैं कहा छोड़ दो इसे, कि नहीं माँ बाप की बहुत इच्छा है मैं करूं। अब देखो इसको व्यर्थ संकल्प तूफान रूप से चल रहे हैं, क्योंकि रोज उससे बात होगी, बातों में झगड़ा होगा, झगड़ों का इफेक्ट होगा, एकाग्रता खत्म। योग की बात तो छोड़ो, पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगता है। तो ये संबंधों की जो बात है, कड़वाहट है, ये भी आज युवकों को विशेष और बहुतों को भटका रही है, बहुतों को भटका रही है। आत्मविमानी होने से ये भटकाव खत्म हो जाएगा। एक बात और सभी को जान लेनी चाहिए कि आत्मविमानी होने की प्रैक्टिस यदि आप अपने लौकिक घरों में करेंगे तो घर का वातावरण कैसा हो जाएगा? बोलो, माताएं बोलेंगी कैसा हो जाएगा? आप बोलो पहली वाली, पवित्र, और थोड़ा जोर से बोलो, शांत, पवित्र और प्रेम से भरा हुआ। क्योंकि आजकल संबंध भी बहुतों को न केवल परेशान कर रहे हैं, बल्कि मैं एक शब्द बोल देता हूं, बीमार कर रहे हैं। इतने टेंशन दे रहे हैं नाते अपने लोगों के। आज एक केस ऐसी दो बहनों का आया, बहन सगी बड़े प्यार से रही, मैरिज होने के बाद क्या क्या कर रही है एक दूसरे के लिए, बेचारी दूसरी बहुत दुखी थी। संबंधों में बिगड़ाव, और ये सब एक ही चीज के कारण हो रहा, जिससे मैं विशेष रूप से कहूंगा, कोई बुरा ना माने, माताओं को बचना है। वो है धन का बहुत लालच। जिनको धन का बहुत लालच होता है वो चाहते हैं दूसरे का सारा हिस्सा भी मेरे बच्चों को मिले, मुझे मिले ये कम रहता है, मेरे बच्चों को मिले। लेकिन सभी मातृशक्ति को मैं आज कहना चाहता हूं, दूसरे के हिस्सों का धन आपके बच्चे लेंगे तो बर्बाद होंगे। आपने ठीक बोला, अनुभवी लगते हैं कोई ये सच्ची बात है, उनका भाग्य उदय नहीं होगा। आज एक बहुत अच्छी बात मैं कुछ सुन रहा था तो मेरे मुझे उसमें सुनने से ख्याल में आ गई। मैं कम सुनता हूँ लेकिन आज मेरा छुट्टी का दिन था, मैंने छुट्टी का दिन रखा था आज। दांत लगवाने थे नीचे के, ये बनावटी लगे हुए हैं, आज ही लगे, नहीं तो मैं क्लास में ना आ पाता, बंद करता हूँ भाई। तो बात बहुत ही गहरी है ब्रह्म मुहूर्त की, ध्यान से सुन लेंगे बड़ा बल मिलेगा इससे। सवेरे आपकी आंख खुली है, ठंड बहुत है, 3:30 का गीत बजा है, भगवान ने आवाज दी है मेरे लाडलो जागो। अब नींद तो खुल गई, अब मन में युद्ध चलने लगा है, जगूं ठंड बहुत है, जगूं या न जगूं, और सो लूं थोड़ा भी, आधा घंटा और सो लूं, 4 बजे जगूंगा। आप सबको पता आधा घंटे के चक्कर में कहाँ पहुंच जाते हैं, सीधे 5 बजते हैं, कोई कोई 5 मिनट के चक्कर में 5 बजा देते हैं। तो एक बहुत सुंदर बात है कि सवेरे उठते ही हम हार गए। हार गए या नहीं, तो हमने जीवन में हार के बीज बो दिए हैं। सब ध्यान, मुझे बहुत प्रिय लगी ये बात, हार के बीज बो दिए। वो हार भिन्न भिन्न जगह हमें दिखाई देगी, हार असफलता, कार्यों में असफलता, और सवेरे विजयी हुए। मान लो एक संकल्प आया भी सो जाएं, लेकिन दूसरे संकल्प ने कहा नो, भगवान जगा रहा है, तुम सोना चाहते हो, वो भाग्य बांटने आया और तुम सोना चाहते हो, वो सब कुछ देने के लिए बुला रहा है, तुम जाओगे नहीं, और विजय हो गई। तो विजय का बीज बो दिया, सफलता का बीज बो दिया है। ध्यान रखेंगे सभी इस बात को, सवेरे काम आएगी। जीवन में हर व्यक्ति सफलता चाहता है, विजय चाहता है, सवेरे बीज बो दें, हार न जाएं। और अगर कोई रोज रोज हारता है तो नहीं, और गहरी बात, उसका मन निराशा से भर जाता है, और ये निराशा अनेक शक्तियों को नष्ट करने लगती है। रोज ही हार मिलने लगे तो नेचुरली निराशा होगी ना, सबको हो जाएगी। कितनी भी कोशिश करें फिर 5 बजे उठ के कोई बात नहीं, योग कर लेंगे, अच्छा करेंगे, लेकिन एक निराशा का संकल्प जो खुशी को छीनता है, वो हमने बो दिया है, बीज बो दिया है। तो जीवन में अनेक जगह निराशा मिलेगी, इस पे भी सबको बहुत ध्यान देना है। तो संडे की मुरली में हम बाबा की एक बात सुन रहे थे, आना और सब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये बात सुंदर प्रैक्टिस है, हम कुछ प्रैक्टिस निकाल लेते हैं जो आत्मविमानी हमें बनाती चलेंगी, देह का भान छुड़ाती चलेंगी, डिटैचमेंट होता चलेगा, व्यर्थ से मुक्त होंगे। आना प्रैक्टिस करेंगे, मैं आत्मा, बोलो मैं आत्मा, आना आना, क्या प्रैक्टिस करेंगे, क्या संकल्प करेंगे, मैं आत्मा परम धाम से इस देह में आई काम करने के लिए। अभी संकल्प कर लो जरा, मैं आत्मा परम धाम से इस देह में आई क्लास सुनने के लिए। 2-4 बारी कर ले दिन में, कोई काम कर रहे विशेष, टेलरिंग में है कोई, मैं आत्मा परम धाम से इस देह में आई इस सिलाई का काम करने के लिए, मैं आत्मा परम धाम में आई, परम धाम से आई भोजन खिलाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, घरों में भी ऐसे दो चार बार, कोई सारा दिन रटने की जरूरत नहीं होती इनको। और फिर जाना है, ब्रह्मा बाबा की ये दोनों ही प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त थी, जाना है भोले बाबा के, इसमें भी कोई संकल्प जोड़ेंगे। जब हम अच्छे संकल्प जोड़ते हैं तो उन चीजों के अभ्यास से अनुभव बहुत अच्छे होंगे। जैसे रोज मुरलियों में, मुरली के बाद बाबा के प्यार में मग्न होने की बातें लिखी आ रही हैं। लेकिन मैं सोच रहा था कितने लोग मगन होते हैं, शायद सुना और भूल गए, क्योंकि जब तक उस चिंतन को और आगे नहीं बढ़ाएंगे, जैसे ये कह दिया गया कि सर्व संबंधों के अनुभव में मगन हो जाओ, लेकिन इतना कहने से तो कोई मगन नहीं हो सकता ना। और क्या करें, वो चिंतन हरेक को स्वयं करना होगा। वहां तो बहुत सारी चीजें नहीं लिख सकते ना, इशारे में लिखा गया है। उसके चिंतन को जितना आगे बढ़ाएंगे उतना मगन अवस्था होगी, कि जिसे भगवान कह के पुकारते थे, ढूंढते थे, वो आकर मेरा पिता बन गया, अधिकार हो गया है उस पर मेरा, वो आकर मेरा शिक्षक बन गया, मुझे ज्ञान दे रहा है, कितनी बड़ी चीज है। चिंतन करते करते मन मगन हो जाएगा। बिना चिंतन के मन मगन नहीं होगा, फिर सभी संकल्प शांत हो जाएंगे। चिंतन, संकल्प और फिर निरसंकल्प, यही गति काम करती रहेगी। तो मुझे जाना है, इसके लिए भी रोज दो तीन बार ही अच्छे संकल्प करें जो ब्रह्मा बाबा करते थे। यहीं पर रहते हुए बाबा बहुत अच्छा अभ्यास करते थे, जो कुछ आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा। ये सब कुछ छोड़कर मुझे संपूर्ण बनकर वापिस जाना है। पीछे बाबा ने रात को अभ्यास करने के लिए एक बहुत सुंदर बात कही थी, मैं तो जब सोता हूँ तो लगभग रोज ही याद आ जाती है। सबको रोज याद करके सोना है। बच्चे जब सोने जाओ अभ्यास करना, मैं आत्मा परम धाम से नीचे उतरी थी, 5000 वर्ष पहले की बात है, एक शरीर में आई, उसे छोड़ा दूसरे में, उसे छोड़ा तीसरे में, चौथे पांचवे में, और 5000 साल की यात्रा पूरी करके अभी शरीर में हूं मैं। अब मुझे जाना है घर, जैसे घर बुला रहा है मुझे, आ जाओ। एक मिनट का चिंतन मन को मगन कर देगा। ये आत्मविमानी होने की प्रैक्टिसेज हैं, इन पे सभी को बहुत अच्छा ध्यान देकर अभ्यास करना चाहिए। और प्रैक्टिस सुनाओ। बाबा ने पिछली मुरली में सार क्या था उस मुरली का, हमने यहाँ क्लास भी की थी, मन, बोलो मन, मन जीते, प्रैक्टिस करनी है तब तो याद रहेगा। मन जीते जगत जीत, तो अभ्यास करेंगे आत्मविमानी होने का, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं, मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूं, मन बुद्धि की मालिक हूं, मन मेरे अधीन है, मैं इसकी मालिक हूं, मेरे ऑर्डर के बिना मन कहीं भाग नहीं सकता। प्रैक्टिस कर लें दो चार बार, एक बार की प्रैक्टिस भी बहुत काम आएगी, दो बार कर लेंगे तो बहुत पावरफुल फीलिंग होने लगेगी। तीसरी प्रैक्टिस, बोलो। अब हम सात प्रैक्टिस निकाल लेते हैं। एक दिन में एक ले सकते हैं, जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं वो इसका प्लान बना लें, और जैसे मैंने कहा सारा दिन रटने की जरूरत नहीं होती, सवेरे अच्छा अभ्यास कर लें दो चार बार, शाम को कर लें, दिन में कर्मों में एक दो बार कर लिया। तीसरा अभ्यास, मैं सूक्ष्म आत्मा प्रकृति की कुटिया में विराजमान हूं, आंखों द्वारा देख रही हूं, एक ही अभ्यास कर लेंगे। अंदर बैठी हूं या आंखें दो खिड़कियां हैं मेरी, इनके द्वारा मैं बाहर का सीन देख रही हूं। चौथा, मैं आत्मा जो हमने पहले चर्चा की, इस देह में अवतरित हूं, मैंने अवतार लिया है इस देह में, किस लिए अवतार लिया है इस पे भी चिंतन करेंगे। मैंने इस देह में अवतार लिया है किस लिए? सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए। देखो हमारा बुद्धि का लेवल बहुत ऊंचा हो जाएगा, हमारा चिंतन बहुत ऊंचा हो जाएगा, जो छोटी बातें हैं उसे बाहर आ जाएंगे, सभी ध्यान देंगे। मैंने अवतार लिया है, दूसरा संकल्प, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। मैंने अवतार लिया है इस प्रकृति को भी पावन करने के लिए। मैंने बाबा के साथ अवतार लिया है उसके दिव्य कार्यों में मदद करने के लिए। मैंने अवतार लिया है सभी को सत्य ज्ञान देने के लिए। थोड़ा सा चिंतन आनंद दे देगा। तो जैसे बाबा ने अवतार लिया, बाबा साकार में ये प्रैक्टिस कराया करते थे, अभ्यास करो, जैसे मैं परम धाम से ब्रह्मा तन में इसकी प्रकृति में आकर बैठ गया हूँ, तुम आत्माएं भी परम धाम से अपनी अपनी प्रकृति में आकर बैठ गए हो। बहुत अच्छी अनुभूति रहेगी, न्यारापन बढ़ता जाएगा, कर्तव्यों की याद रहेगी। तो जो शांति स्थापित करने आए हों, संसार की कोई बात उन्हें अशांत नहीं कर सकती, चिंतन में लाएंगे। जो शांति स्थापित करने आए हों वो कलयुग की अशांति से प्रभावित नहीं हो सकते। जो पवित्रता की स्थापना करने आए हों वो ये नहीं कह सकते कि कलयुग का वातावरण बहुत गंदा है, यहाँ पवित्र रहना बहुत मुश्किल है। दिव्य कर्म होते हैं अवतार के, हमारे भी कर्म दिव्य और अलौकिक होंगे, ये चिंतन में ले आना है। तो इसका गहरा इफेक्ट जीवन पर होता जाएगा। पांचवा अभ्यास, बोलो, मैं इस सृष्टि पर मेहमान हूं। अवतार लिया है वही जाना है, उसी का दूसरा रूप हो गया, मेहमान हूं। मेहमान हूं तो जहां मेहमान बन के जाते हैं वहां से बहुत माल उठा लाते हैं। बोलो, माताओं के घर में आपका भाई आया हो, आपके पास कोई बहुत अच्छी चीज हो, उसे बड़ी प्रिय लगी हो, साथ ले जाएगा क्या? माताएं बताओ, आपका भाई है, बहुत प्यार है आपका, उससे बहुत प्यार है, माताएं तो चुप हैं आज, पता नहीं क्या हुआ है, उठा के ले जाएगा क्या? नहीं, मेहमान है। मेहमानगिरी में यही तो बात है, पहले तो मेहमान दो चार दिन भी रहते थे, आजकल मुझे नहीं लगता एक दो घंटे के बाद ज्यादा रहता है कोई, हैं? पहले ही पूछ लेते हैं जाने का क्या प्रोग्राम है क्योंकि ना तो इन्हें टाइम ना उन्हें टाइम, दोनों जॉब पर जा रहे हैं, हम मेहमान आ गए तो मुश्किल हो जाएगी ना, इसलिए पहले तो चार दिन पांच दिन कहीं कहीं हफ्ता भी, जब हम छोटे थे हफ्ते भर भी मेहमान रहते थे घरों में, और वो एक अलग ही समय था, वो भारत की कल्चर थी। अब विकास तो हुआ लेकिन जॉब में सब इतने बिजी हो गए कि जो असली कल्चर थी वो लोप होती जाती है। अगला अभ्यास, मैं इस देह में फरिश्ता हूं, ये बहुत सुंदर अनुभूति कराएगा। मैं इस देह में फरिश्ता हूं, और सातवां अभ्यास ले लेंगे कोई भी स्वमान का। अलग अलग स्वमान ले सकते हैं, मैं आत्मा हूं तो मैं महान आत्मा हूं, या मैं पुण्य आत्मा हूं, या मैं परम पवित्र आत्मा हूं, तो आत्माभिमानी स्थिति बढ़ती जाएगी। अब थोड़ा सा चिंतन और कर लेते हैं, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति को कई लोग ठीक से जानते नहीं हैं। ये चिंतन बहुत बड़ा जिसको अब हम ले रहे हैं, मैं थोड़े थोड़े में आपके सामने रखता हूं 10 मिनट में। और जो आत्माभिमानी होने का बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहते हैं वो इस चिंतन को आगे बढ़ाएंगे। आज किसी ने मुझे पूछा कि मैंने अपने ग्रुप में एक होमवर्क दे दिया है सबको, सोशल मीडिया से चलता है ना आजकल तो ऑनलाइन ग्रुप है, क्या होमवर्क दिया तुमने कि अश्रत्नों की 8 क्वालिटी बताओ। फिर कहने लगी सच बात यह है मुझे भी नहीं पता है, तो आप बताओ कुछ। मैंने कहा अच्छी बात है, तो अश्रत्नों की 1 क्वालिटी होगी अश्रतन, अंत तक। बाबा के एग्जैक्ट शब्द हैं, अंत तक संपूर्ण आत्माभिमानी बन जाएंगे। आत्माभिमानी स्थिति इतनी गहन है कि जो आत्माभिमानी हो गए वो अश्रतन बनेंगे, तो और भी, लेकिन थोड़ी परसेंटेज थोड़ी कम रह जाएगी। बाबा ने रात्रि क्लास में आखिरी दिनों में साकार में ये एक बहुत गुह्य राज बताया था कि शिव बाबा की डिग्री 100, ब्रह्मा की डिग्री 99, ममा की डिग्री 98। अब इस बात को सब समझ सकते हैं ना, हमारी मोबाइल की बैटरी 100 भी दिखाएगी, फिर थोड़ा यूज होगा 99 और यूज होगा 98, सब जानते हैं इन चीजों को। और फिर उसे नीचे के जो रतन है अष्ट, 6 और हैं, 97, 96, 95, ऐसे। तो आत्माभिमानी का अर्थ है आत्मा की 7 क्वालिटी जीवन में आ जाए, और नेचुरल जीवन में आ जाए। जो बाबा एक शब्द बोलते रहे ना मुरलियों में, नेचर नेचुरल हो जाए, नेचर नेचुरल। सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। एक व्यक्ति सुस्त है, मैं पहले खराब बात सुना रहा हूं, एक व्यक्ति सुस्त है, उसकी ये नेचर है, उसको इसके लिए कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या नेचुरल रहती है? हाँ बोलो। वो सुस्ती होगा। कहानी सुना देता हूँ हंसी की। एक बार राजा ने सोचा कि सुस्त लोगों को भी इनाम दिया जाए, तो कहा जो भी सुस्त हैं आज इस मैदान में आ जाओ। तो मैदान में आ गए, सभी बैठ गए, राजा ने आग जलवा दी थी जहाँ तहाँ कि वो जलने लगे। कुछ लोग तो थोड़ी देर ठहरे कि आग पास आएगी तब कुछ सोचेंगे, थोड़े थोड़े भागने लगे। एक व्यक्ति लेट गया, राजा ने कहा ये सबसे बड़ा सुस्त है जो भागा ही नहीं। उसने कहा नहीं राजन, मैं सबसे बड़ा सुस्त नहीं हूँ, एक और है जिसने कहा कौन जाके क्या करेगा इनाम विनाम लेके, वो सबसे बड़ा सुस्त है। मेरे से बड़ा है जो आया ही नहीं कंपटीशन में, इतना सुस्त है। तो नेचर नेचुरल। किसी की नेचर सरल चित्त की होती है, अब गुण देखो। किसी की नेचर संतोषी नेचर है, देखो इसको, वो संतुष्ट रहते हैं सदा, वो सरल रहते हैं सदा, देखेंगे आप एक एक व्यक्ति तो सबको मिल जाएगा ऐसा। तो ये सातों गुण इतने पावरफुल रूप से जीवन में आ जाएं कि वो नेचुरल नेचर बन जाएं। पहला है आत्मा ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप का क्या अर्थ होता है राम? जो कुछ ज्ञान कहता है वो सब जीवन में आने लगे। प्रेम स्वरूप, सभी आत्माओं के लिए निस्वार्थ प्रेम, और प्रेम के साथ एक शब्द और जोड़ दो, आत्मिक प्रेम। बाबा ये सुंदर सब जोड़ते हैं, क्योंकि बहुतों में अपनों के लिए तो प्रेम होता है या अपने धर्म वालों के लिए प्रेम होता है, लेकिन दूसरे धर्म वालों से नफरत होती है। आत्मिक प्रेम, और जब आत्मिक प्रेम जीवन में आएगा तो क्या नहीं रहेगा? घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब खत्म हो जाएंगे। तीसरा गुण आत्मा का शांति, गहन शांति, ऐसी शांति जिस शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। शांति हमारी शक्ति, ऐसी शांति नहीं, मैं उदाहरण दिया करता हूं, कई लोग शांत मिलते हैं, मेरी शांति को कोई डिस्टर्ब ना करे, मुझे बहुत शांति चाहिए, कई लोग मेरी शांति को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो वो शांति कैसी है? छुई मुई। शांति माना पावरफुल, सारा संसार शांत करना चाहे हम शांत रहे, कितने भी तूफान चल रहे हो हमारा मन तूफानी न बन जाए, शांत चित्त। तो ये शांति, कौन सी चीज शांत करती है उनको समाप्त कर देंगे आत्मा का अभ्यास करते करते। चौथा गुण आत्मा का सुख स्वरूप, संपूर्ण सुख। बाबा के शब्द थे, बहुत पहले की मुरली है, मुझे याद रहती है, जीवन भर एक ही बार चली थी वो। तुम बच्चे सुखों के सागर की संतान हो, दुख तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सके, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। यह है सुख स्वरूप हूं मैं आत्मा, ईश्वरीय सुख मुझे मिल गया, चाहे बीमारियां आ रही हैं, धन की कमी हो गई, संबंधों में कुछ हो गया, लेकिन मेरे सुख को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। और जब ये सुख मिल जाता है तो सांसारिक सुखों में बुद्धि भटकती नहीं है, सुख स्वरूप हूं। अगला गुणात्मा का पवित्रता, मैं आत्मा सब जोड़ देंगे, परम पवित्र हूं, मूल रूप से मैं परम पवित्र हूं, तो कोई विकार नहीं। विकारों की लंबी लिस्ट है, 10 तो बना ही लें, 10-12, उन सब से मुक्त। इसके साथ और आगे बढ़ते बढ़ते इसमें सब जोड़ देंगे, मैं संपूर्ण निर्विकारी हूं, जो सबसे ऊंची स्थिति है। तो मेरी पवित्रता मेरा तेज है, मेरी पवित्रता मेरा बल है। पवित्र आत्माएं सबसे अधिक बलवान होती जाएंगी, और जो जितना बलवान होंगे वही विश्व पर राज करेंगे। साकार मुरलियों में ये बात आती रहती है। तो मैं पवित्र हूं, हर तरह की अपवित्रता नष्ट, यह आत्मिमानी रहने वालों की स्पष्ट सूक्ष्म निशानी, जो मनुष्य को खुद पता चलेगा, दूसरों को भी चलेगा, पर खुद को पहले पता चलेगा। आत्मा का अगला गुण शक्ति स्वरूप, सर्व शक्तियों की मालिक हूं मैं, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति, नेचुरल, इससे निर्भयता। और सारी जो भिन्न भिन्न शक्तियां हैं उनकी स्पष्ट अनुभूति, ये नहीं परखने की शक्ति नहीं है, निर्णय ठीक नहीं होते, सहन शक्ति नहीं है, इस शक्ति की कमी महसूस होती है। सब शक्तियाँ नेचुरल रूप से ऑटोमेटिकली काम करती रहे। जैसे जो व्यक्ति बहुत सहनशील होता है उसे सोचना थोड़ा पड़ता है कि यहाँ मुझे सहन करना है, ऑटोमेटिक सहनशीलता होती रहती है। ऐसे ही आनंद स्वरूप, आनंद आत्मा की सर्वोच्च स्थिति है। इसमें हमें अलौकिक खुशी, देखो क्या क्या मिल जाता है परमानंद में, क्या क्या चीजें मिलती हैं। जो आत्मा संपूर्ण पवित्र है, जो आत्मा संपूर्ण रूप से ईश्वरीय नशे में रहती है, अलौकिक खुशी में रहती है, ये तीनों चीज मिलकर निर्माण करती हैं आनंद का। तो आनंद की स्थिति हो जाएगी और ये परम आनंद बहुत बड़ी चीज है। हो गई इनको आनंद की स्थिति, ये परम आनंद बहुत बड़ी चीज है। ये सबको प्राप्त नहीं होता, इसको ही अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है। तो सभी इस तरह चिंतन करेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा चिंतन आपको सिखाया है भाई, प्यार है और क्या क्या नहीं होना चाहिए मेरे पास, मुझे सबके लिए प्यार है या नहीं, या दो चार मेरे साथी पड़ोसी ऐसे हैं जिनको तो हम प्यार नहीं कर सकते, बाकी सब शायद दुनिया को करेंगे, इसको नहीं, इसने मुझे बहुत तंग किया, ये भी तो होता है ना। तो ये सब चीजें समाप्त होकर आत्मा के सातों गुण नेचुरल रूप से हमारे जीवन में आ जाएं। सब चिंतन करेंगे बहुत अच्छा और एक प्लान बनाएं सभी। तो जब बाबा कहे कि आत्मविमानी होकर बैठो, तुरंत स्थित हो जाएं और ये अभ्यास करते करते अंत तक हमारी स्थिति हो जाएगी सेकंड में ऐशरीरी। और मैं वो बात फिर सुना दूं जो बार बार सुनने और सुनाने की है, जो बच्चे ऐशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, बल्कि वे स्वइच्छा से देह छोड़ेंगे। तो बहुत आत्मिमानी होने वाले तो संकल्प करेंगे चली मैं आत्मा परम धाम और पहुंच जाएंगे। ओम शांति।